त्रिकाय एवं बोधिसत्व। त्रिकाय का सिद्धांत महासांघिकों के द्वारा विकसित किया गया। इस मत के अनुसार बुद्ध का जन्म वास्तविक रूप से नहीं हुआ, उन्होंने केवल सांसारिक कार्यों के निर्वाह के लिए यह रूप धारण किया। त्रिकाय मत के अनुसार बुद्ध काया या धर्म काया के तीन स्वरूप हो सकते हैं। पहला रूप काया या निर्माण काया, यह मानव शरीर का रूप है। दूसरा संभोग काया या दैवी स्वरूप है, इनमें समस्त महापुरुष के लक्षण विद्यमान है। तीसरा धर्म काया या ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है, इसे स्वभाव काया या स्वाभाविका भी कहा गया है। बोधिसत्व की विचारधारा सर्वप्रथम थेरवादियों के द्वारा विकसित हुई। बुद्ध ने पूर्व जन्म प्राप्त किए हैं तथा उनका प्रथम जीवन सुमेध नम ब्राह्मण के रूप में हुआ था। इनके पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक के रूप में सुत पिटक में वर्णित किया गया है। सर्वस्थिवादियों के द्वारा अवदानों की रचना हुई, इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण प्राप्त हुआ है। इन्हीं जन्मों के आधार पर ही बौद्ध धर्म में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। प्रत्येक बौद्ध देवता की पूजा मूर्तियों तथा उनके स्वर्ग स्थान का विवरण विकसित किया गया। गुही समाज में सर्वप्रथम पांच ध्यानी बुद्धों का वर्णन प्राप्त हुआ है, जिन्हें पंच स्कंद कहा गया। वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, इनके मंत्र मंडल तथा देवियां भी विकसित की गईं। इन पांच ध्यानी बौद्धों का जन्म आदि बौद्ध से हुआ। ध्यानी बुद्धों के परिवार ने देवताओं के कुलों एवं वंशों का निर्माण किया। पांच कुलों के द्वेष, मोह, राग, चिंतामणि तथा समय थे। सुखावती व्यू में अमिताभ को सुखावती स्वर्ग का मुख्य देवता माना गया है। अमिताभ ने अवलोकितेश्वर या पद्मपाण को अवतरित होने में सहायता की थी। पायान ने मंजुश्री एवं अवलोकितेश्वर का वर्णन किया, जबकि वेनसांग के सीयुकी में अवलोकितेश्वर, हारिति, किष्टिगर्भ, मैत्रेय, मंजुश्री, पद्मप्रणी, वैरश्वान, शाक्य बुद्ध, शाक्य बोधिसत्व आदि का वर्णन है। मंजू को कुमारभूत भी कहा गया है। इनका संबंध लक्ष्मी या सरस्वती से है। देवियों में तारा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये प्रज्ञा का स्वरूप है तथा इसे प्रज्ञा पारमिता की देवी भी कहा जाता है। तारा का विकास भी तंत्रवाद की देन मानी जाती है। बौद्ध दर्शन, हीनयान में दो प्रसिद्ध दर्शन संप्रदाय वैभाषिक एवं सौत्रातिक हैं, जबकि महायान में दो संप्रदाय योगाचर एवं शून्यवाद हैं। वैभाषिक, वैभाषिक हीनयान का दर्शन है। इसके दो प्रधान भेद हैं, कश्मीर का वैभाषिक मत एवं पश्चिमी वैभाषिक जिसका केंद्र गांधार था। इस मत के चार प्रमुख आचार्य थे, धर्मत्रात, धोषक, वशुमित तथा बुद्धदेव। वैभाषिकों के अनुसार जगत का अनुभव इंद्रियों के द्वारा होता है तो उसकी वह सत्ता होती है, प्रत्यक्ष एवं अनुमान दोनों से इसका ज्ञान होता है। जगत की सत्ता के साथ अपने अंतर्मन की चित्त सत्ता होती है, इन दोनों की सत्ता भिन्न होती है। वैभाषिक में संपूर्ण संसार को तीन भागों में बांटा गया है, स्कंध, आयतन, धातु। स्कंध के पांच प्रकार हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। आयतन का अर्थ वस्तु के ज्ञान से है, जो इंद्रियों एवं विद्या से प्राप्त किया जा सकता है। धातु का आधार सबल अक्षर से है, इसकी संख्या 18 है। वैभाषिकों का उत्कर्ष निर्वाण है, जो सत्य मार्ग के अनुसरण से संभव है। निर्वाण में समस्त प्रकार के भेद लुप्त हो जाते हैं। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश की रचना की है। धर्मकीर्ति ने वैभाषिक मत पर न्याय बिंदु नामक रचना लिखी। सौत्रांतिक, सौत्रांतिक वह सत्ता को स्वीकार करते हैं किंतु उसका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं होता है। चित्त शुद्ध एवं निराकार है, परंतु उसके आकारों का उदय एवं अंत होता रहता है। बाह्य जगत की अपेक्षा वास्तविकताओं का चित्त से अधिक संबंध है। अविद्या में कारण साध्य जगत की सत्ता में विश्वास करता है, किंतु धीरे धीरे अंतर जगत की सत्ता को समझता है तथा बाह्य जगत से अंतर जगत में प्रवेश करता है। स्वत्रांतिक लोक सत्ता को रखने वाले दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव नहीं मानते तथा वर्तमान को छोड़कर भूत तथा भविष्य को भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान दीपक के समान है, जो स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता है। वेनसांग के अनुसार कुमार लाभ इस मत के आदि प्रवर्तक थे। उनके शिष्य श्री लाभ ने उन्हें आगे बढ़ाया। धर्मित्रात, बुद्धदेव, तथ्य, यशोमित्र भी इसके आचार्य थे। योगाचार, यह महायान दर्शन है, इसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है। मैत्रेयनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है तथा संघ इसे स्थापित किया। विज्ञानवाद ने बाह्य सत्ता का भाव ज्ञान से माना है। ज्ञान विज्ञान तथा चित्त वास्तविक सत्ता है। जगत के पदार्थ ज्ञान के आकार हैं। विज्ञान को एक काल सत्ता स्वीकार करने के कारण इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग एवं आचार पर बल देने के कारण इसे योगाचार कहा गया। विज्ञानवाद के अनुसार सत्ता दो प्रकार की होती है, व्यवहारिक और परमार्थिक। मैत्रेयनाथ नाथ ने अपने ग्रंथों धर्म धर्मतावी भंग मनुष्यतावी भंग योगाचार भूमि शास्त्र में इसकी इस मत की स्थापना की। असंग का जन्म चतुर्थ शताब्दी में पेशावर में कौशिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वसुबंध इनके भाई थे। असंग ने अपनी रचना पंचभूमि अभिधर्म समुच्चय महायान संग्रह आदि में इस मत को आगे बढ़ाया। विज्ञानवाद में चित्त को प्रधानता प्रदान करते हुए परम तत्व माना गया है। चित्त ही उत्पन्न होता है, चित्त ही इसका प्रतिरोध करता है, यही एकमात्र विशिष्ट तत्व है। स्थिरमति दीननाथ तथा धर्मकीर्ति आदि योगाचार के प्रसिद्ध विद्वान थे। दीननाथ ने 5वीं शताब्दी में बौद्ध न्याय या न्याय शास्त्र का प्रतिपादन किया। वे काशी के निवासी थे लेकिन अधिकतर वे नालंदा में रहे। अपने तर्कशास्त्र से उन्होंने जीवन एवं जगत को जानने का प्रयास किया। नालंदा में उन्होंने प्रमाण समुच्चय की रचना की। उनकी अन्य रचनाएं न्याय प्रवेश एवं आलंबन परीक्षा है। उनकी तुलना जर्मन दार्शनिक कांत से की जाती है। उन्होंने क्रिया की दो स्थितियां मानी है, पहला प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा ग्रहण की वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, दूसरा अनुमान बुद्धि द्वारा इस स्थिति को प्रदान किया गया रूप। शून्यवाद इसे माध्यमिक दर्शन या सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में इस मत का प्रवर्तन किया। युक्ति षष्टिका सुनिता सप्तति विग्रह अनिवर्तनी प्रज्ञा परमिता शास्त्र आदि इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था परंतु अधिकांश समय कश्मीर में बीता। वे कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी कारण से बनी है, अतः वह शून्य है। वस्तुओं का अस्तित्व सापेक्ष सिद्ध होता है, यह भाव एवं अभाव की स्थिति है। निश्चित रूप में इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए यह माध्यमिक दर्शन है। शून्यवाद में सत्य दो प्रकार में निर्धारित है, परमार्थ सत्य और संवृत्ति सत्य। जगत की सत्ता सावृतिक या व्यावहारिक है, जो लोक सत्य है। संवृत्ति सत्य से परमार्थिक स्वरूप आवृत्त होता है, इसे अविद्या भी कहते हैं। नागार्जुन के अनुसार व्यवहार की सहायता के बिना परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है तथा परमार्थ को बिना जाने निर्माण की स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। अतः पारमार्थिक तत्व अनिवर्चनीय है तथा उसका ज्ञान सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से होता है। असत्य से सत्य का तथा माया से परम तत्व का भी ज्ञान होता है। दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाने से वास्तविक सत्ता का आभास होता है। परमार्थिक सत्य का ज्ञान स्वानुभूति के द्वारा ही संभव है। इसे समाधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। समाधि के लिए समथ की आवश्यकता होती है। समथ युक्त समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इससे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। नागार्जुन के पश्चात आर्यदेव ने चतुशतक में इसका प्रतिपादन किया। चंद्रकीर्ति ने माध्यमिक अवतार प्रसन्न प्रदा चतुशतक व्याख्या नामक ग्रंथों की रचना की। शांति देव ने शिक्षा समुच्चय सूत्र समुच्चय तथा बोधिचर्य अवतार एवं शांति रक्षित ने तत्व संग्रह माध्यमिक अलंकार कारिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। विश्वविद्यालय पहला नालंदा। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना बुद्ध के जीवन काल में हो गई थी। 500 वणिकों ने 10 करोड़ मुद्रा से क्रय करके नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। यह सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। अशोक ने भी यहाँ एक महाविहार निर्मित किया था। विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के काल में हुई। तत्पश्चात बुद्ध गुप्त थागुत गुप्त नरसिंह गुप्त ने भी इसे संरक्षण दिया। शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी में बढ़ी जब दीननाथ ने नालंदा जाकर ब्राह्मण विद्वान सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मुख्य विश्वविद्यालय भवन में 7 विशालकाय कक्ष तथा 300 छोटे छोटे कक्ष थे। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए धर्मयज्ञ नामक विशाल पुस्तकालय था। सिंह ने यहाँ अध्ययन किया था तथा 500,000 श्लोक वाले 4,000 संस्कृत पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। इस पुस्तकालय में 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्न दधि तथा रत्न रंजक। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु नियम अत्यंत कड़े थे। विद्यार्थी को अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। विद्यार्थियों को रहने एवं खाने की व्यवस्था निःशुल्क थी। प्रत्येक आचार्य या उपाध्याय 8-10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। नालंदा में मुख्यतः महायान की शिक्षा दी जाती थी, परंतु वैदिक साहित्य सहित कुल 18 विषय पढ़ाए जाते थे। वेद संघ ने यहाँ के विद्वानों का वर्णन किया है। नागार्जुन वसुबंधु असंग धर्मकीर्ति धर्मपाल चंद्रपाल गुणमति स्थिरमति प्रभामित्र जिनमित्र आर्यदेव दीननाथ ज्ञानचंद्र आदि विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। आर्यदेव एवं दीननाथ दक्षिण भारत के निवासी थे। धर्मपाल भी कांची का निवासी था। शीलभद्र का संबंध समतट या बंगाल से था तथा गुणमति एवं स्थिरमति पल्लवी के निवासी थे। नालंदा विश्वविद्यालय चीन के विद्यार्थियों में अति प्रिय था। दूसरा विक्रमशिला। यह विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी के पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया तथा यह आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। धर्मपाल ने यहाँ 108 शिक्षकों को शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। भिक्षु एवं शिक्षक मिलाकर प्रशासन का संचालन करते थे। 6 द्वार पंडितों द्वारा समिति का संचालन होता था, जिसका प्रधान महास्थावीर होता था। 10वीं शताब्दी में इसके प्रथम द्वार पर कश्मीर के भिक्षु रत्नव्रज, द्वितीय द्वार पर गौड़ में रहने वाले ज्ञान सिंह मित्र, तृतीय द्वार पर रत्नाकर शांति, चतुर्थ द्वार पर बागेश्वर कीर्ति, पंचम पर नरोप तथा षष्ठ पर प्रभाकर मति बैठते थे। रक्षित विरोचन, ज्ञानपद बुद्ध, जेतारी रत्नाकर शांति, ज्ञान मिश्र मित्र, रत्नवर्ज, दीपशंकर एवं अभय शंकर यहाँ के मुख्य विद्वान थे। गौण के निवासी दीपांकर ने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की थी। दीपांकर ने बचपन में कृष्णगिरी विहार में राहुल गुप्त से शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उसने ओदंतपुरी में शील रक्षित, चंद्रकीर्ति तथा धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। कालांतर में वह बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तिब्बत गया था। विक्रमशिला में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यह केंद्र तिब्बत के विद्यार्थियों में अत्यधिक प्रसिद्ध था। मुस्लिम आक्रमण के समय 1203 ईस्वी में बख्तियारुद्दीन खिजली के द्वारा इसे भी नालंदा के साथ नष्ट कर दिया गया। सिराज के तबकाते ए नासिरे में इसका विवरण दिया गया है। तीसरा, बल्लभी। बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ प्रथम विहार का निर्माण राजकुमारी टड्डा के द्वारा करवाया गया था। 580 ईस्वी में यहाँ के शासक धरसेन ने इसके विहार का निर्माण करवाया, जिसका नाम शिवबप्पपाद था। इस विहार में प्रधान स्थरमती थे। इस सिंह ने इसका महत्व नालंदा की तरह ही माना है। विश्व संघ ने यहाँ 100 विद्वानों एवं 6000 वर्ण दिया है। 12वीं शताब्दी के पश्चात इन विहारों का महत्व घटने लगा। बौद्ध धर्म में अन्य शिक्षा केंद्रों में श्रावस्ती का विहार भी प्रमुख था। यह लगभग 130 एकड़ में विस्तृत था तथा भिक्षुओं के निवास के लिए आवास, स्नानागार, औषधालय, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष तथा व्याख्यान कक्ष आदि बनाए गए थे। फायान ने कश्यप बुद्ध नामक एक महाविहार का उल्लेख किया है, जो शिक्षा का महान केंद्र था। यह 5 मंजिल का था। इसकी मंजिलें क्रमशः हाथी, सिंह, घोड़े, बैल तथा कबूतर की आकृति में थे। वेद संघ ने भी बौद्ध शिक्षा केंद्रों के रूप में जालंधर के बौद्ध विहार, मतिपुर के विशाल संघों, कानेकुब्ज के महाविहारों का वर्णन किया है। वेद संघ ने जालंधर में सर्वस्तिवाद का अध्ययन किया। मतिपुर में मित्रसेन नामक बौद्धों से अभिधर्म ज्ञान तथा प्रस्थान शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कानेकुब्ज में भद्र नामक बौद्ध विहार में निवास कर वीरसेन से त्रिपिटक का ज्ञान प्राप्त किया। मुंगेर के हिरण विहार में रहकर उसने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त कपिलवस्तु एवं वैशाली को भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। पराभव। 7वीं शताब्दी तक निरंतर प्रगति के पश्चात बौद्ध धर्म का पराभव प्रारंभ हो गया। 12वीं शताब्दी तक ही अपनी मातृभूमि से भी विलुप्त हो गया। इसके प्रमुख कारण निम्न माने जा सकते हैं। पहला, बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना तथा किसी केंद्र संस्था के अभाव के कारण विपत्ति में सुधारवाद को आंदोलन का स्वरूप न दे पाना। दूसरा, महायान संप्रदाय के उदय के कारण बौद्ध देवी देवता हिंदू धर्म के देवों में के समक्ष आ गए। बौद्धों में कर्मकांड भी हिंदू धर्म के आधार पर विकसित होने लगे, अतः दोनों धर्म एक दूसरे के निकट आ गए। तीसरा, अवतारवाद में विश्वास होने से बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में आत्मसात करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मान लिया गया। चौथा, हिंदू धर्म सुधारों जैसे शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र आदि ने हिंदू कुरीतियों का विरोध कर उसे तक्ष एवं परिमार्जित बनाया तथा बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण किया। शंकराचार्य इसीलिए पक्षण बौद्ध कहलाते हैं। पांचवा, बौद्ध धर्म में तंत्र के उदय से विहारों में भ्रष्टाचार फैल गया तथा वे नष्ट हो गए। छठवा, मुस्लिम आक्रमण ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। बख्तियारुद्दीन खिजली ने 12वीं शताब्दी में नालंदा विहार को जला डाला था। बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत त्रिपिटकों में संग्रहित हैं। पिटक का अर्थ टोकरी लिया गया है। जिस प्रकार उत्खनन सामग्री को एक श्रमजीवी दूसरे श्रमजीवी को प्रदान करता है तथा टोकरी क्रम से आगे वाले श्रमजीवी के हाथों से गुजरती हुई अंत में यथेष्ट स्थान पर पहुंचती है, ठीक इसी प्रकार पिटक भी पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य परंपरा के द्वारा संरक्षित होते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध ने स्वयं यह इच्छा प्रकट की कि उनकी शिक्षाओं का संकलन हो, अन्यथा उनका स्वरूप बिगड़ सकता है। बुद्ध की यह शंका सत्य भी हुई। तथागत के परिनिर्वाण के समय जब समस्त भिक्षु शोकाकुल थे, उसी समय सुभद्र नामक भिक्षु ने उनकी मृत्यु पर संतोष प्रकट किया कि अब भिक्षु बुद्ध द्वारा निर्मित एवं प्रतिपादित अनेकानेक दुस्सह विधि निषेधों से मुक्त हो गए। सुभद्र के इस कर्तव्य विहीन कथन से शोकमग्न भिक्षु संघ में चिंता को जन्म दिया। संघ भेद से बचने का एक ही उपाय था कि बुद्ध द्वारा उपदेशित नियमों आचारों आदि को संहिताबद्ध किया जाए। इस ध्येय से ही अजातशत्रु द्वारा संरक्षित राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप ने 500 भिक्षुओं की एक संगीति आयोजित की, जिसमें विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन हुआ। तिथि संगीति में अभिधम पिटक रचित किया गया। इस तरह से त्रिपिटक प्रकाश में आया। पाली साहित्य। बौद्ध साहित्य प्रारंभ में पाली भाषा में संकलित हुए। इसे बुद्ध की मूल भाषा स्वीकारा गया है। पाली का अर्थ पंक्ति या धार्मिक साहित्य होता है। बौद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका में वट्टगामिनी अभय के शासनकाल में पाली भाषा में लिखा गया। विनय पिटक। इसे प्रथम बौद्ध संगीति में 483 ईस्वी पूर्व में संहिताबद्ध किया गया। इसे सर्वप्रथम श्रीलंका में लिखा गया। विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी नियम विधि निषेध आदि संग्रहित हैं। इसके तीन भाग हैं, सुत्त विभंग, रवधक तथा परिवार या परिवार पाठ। पहला सुत्त विभंग या सूत्रों पर टीका है। पतिमुख की टीकाएं इसमें संग्रहित है। इसे विनय पिटक का आधार माना जाता है। इसमें भिक्षु पतिमुख संघ के 8 पाठों की 227 गलतियों का वर्णन एवं सुधार है तथा भिक्षुणी पतिमुख संघ के 7 पाठों के 311 दोषों का वर्णन है। सुत विभंग के 2 भाग हैं। महाविभंग इसमें 8 अध्याय हैं, जो 8 प्रकार के नियम तोड़ने के कारण दोष आदि का वर्णन करती हैं। इसे पराजिक भी कहा गया है। दूसरा भिक्षुणी विभंग, इसमें भिक्षुण संघ संबंधी नियमों का प्रतिपादन है। इसे प्रसिद्ध भी कहा गया है। दूसरा रवंधक, रवंधक में संघ के नियमों का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को किस प्रकार के नियम अपनाने चाहिए। यह सुत विभंग की अगली कड़ी है। संघ जीवन एवं उसके आदर्श का यथार्थ अंगन इससे प्राप्त होता है। इसके 2 भाग हैं, महावग चुल्लवग। महावग में 10 अध्याय हैं। इसमें संघ का विकास, संघ में प्रवेश की अनुमति, उपोषद की बैठक, पावरण एवं कथिना संस्कार, वर्षावास के नियम आदि का वर्णन है। भोजन, वस्त्र, बैठक, वेशभूषा, चिकित्सा आदि को भी विधिवत वर्णित किया गया है। यह तत्कालीन भारत के सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उल्लेख करता है। चुल्लवग में 12 खंतक हैं। भिक्षु भिक्षुणियों के नियम हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना का भी वर्णन है। प्रथम 2 संगीत नियम का वर्णन है। तीसरा परिवार या परिवार पाठ या विनय पिटक का अंतिम भाग है। संभवतः श्रीलंका में भिक्षु दीप द्वारा इसकी रचना हुई। इसमें 19 अध्याय हैं। यह सुत विभंग एवं रवधक की कुंजी माने जाते हैं। इसमें विनय की विशेषताओं की सूची प्राप्त होती है। सुत पिटक। सुत पिटक में धर्म उपदेशों का संकलन है। सुत्तों को मुख्यतः गद्य में लिखा गया है। इसके 5 अंग हैं। अंगों को निकाय कहते हैं। पहला दीघ निकाय, इसके सुत्त बड़े हैं, कुल 34 सुत्त हैं। इसमें कुछ गद्य में हैं तथा कुछ गद्य पद्य मिश्रित गाथा में। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यह 3 भागों में है। दीघ निकाय के सुत्त बौद्ध धर्म की विभिन्न प्रकार की परंपराओं एवं सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मजाल सुत्त में तत्कालीन 62 सिद्धांतों एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। इसके महापरिनिर्वाण सुत्त में बुद्ध के अंतिम उपदेश इच्छा आनंद के साथ संवाद तथा महापरिनिर्वाण का मार्मिक वर्णन है। महागोविंद सुत्त इतिहास एवं भूगोल की जानकारी देता है। नामसभा, महाशमय, सकपन्न एवं अन्य सुत्त इस काल के विभिन्न देवताओं एवं उनकी प्रसिद्धि का वर्णन करते हैं। सिंगाल उपवास सुत्त में मनुष्य के आचार व्यवहार कर्तव्य आदि का वर्णन है। बुद्ध परंपरा के अनुसार अशोक की धम्म नीति इसी से प्रभावित थी। दूसरा मध्यम निकाय, इसके सुत्त मध्यम आकार के हैं, न अधिक दीर्घ न अधिक लघु। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के व्याख्यान, वार्तालाप एवं कथानक है। इसमें 152 सुत्त हैं, जिसमें शील, समाधि एवं प्रज्ञा के भी कथानक हैं। इसका सबसे प्रमुख सुत्त मूल पर्याय सुत्त है। कुछ सुत्तों में दंड संहिता का भी वर्णन है। मध्यम निकाय की टीका पपंच सुदनी के अनुसार मध्यम निकाय को मध्यम संगति भी कहा जाता है। तीसरा संयुक्त निकाय, यह सुत्तों के वर्गों का समुच्चय है। कुल 56 वर्ग हैं। इसके भिक्षु भिक्षुणी सुत्त गद्य एवं पद्यात्मक हैं। इनका अत्यधिक काव्यात्मक महत्व है। इसके सुत्त निम्न सिद्धांतों के आधार पर संकलित हैं। पहला जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। दूसरा जो देवताओं, मनुष्यों एवं दानवों का वर्णन करते हैं। तीसरा ऐसे सुत्त जो प्रभावशाली देवों का वर्णन करते हैं। चौथा अंगुत्तर निकाय, इसके सुत्त 11 वर्गों में संगठित है। प्रत्येक वर्ग को निपात कहा गया है। यह निकाय स्त्री, न्याय व्यवस्था, दंड, मिथ्या, खंडन को व्यक्त करता है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। विंटरनीस के अनुसार अंगुत्तर निकाय ही अभिधम पिटक का आधार बना। पांचवा खुद्दक निकाय, यह 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। यह ग्रंथ स्वतंत्र एवं पूर्ण है। इसके अंतर्गत निम्न ग्रंथ आते हैं। खुद्दक पाठ, इसमें 9 लघु पाठ हैं। यह बौद्ध प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूत्रों का ग्रंथ है। भिक्षु बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय इसका पाठ करते हैं। परामर्श ज्योतिका इसकी टीका है। इसके मंगल एवं मित्र सूत्र प्रमुख हैं। धम्मपद यह 26 अध्यायों में है तथा 423 सूत्र संग्रहित हैं। इनकी गाथाओं को भिन्न पाली साहित्य से संग्रहित किया गया है। इसमें धर्मशील तथा आचार के ऊपर बहुसंख्यक सिद्धांत वाक्य वर्णित हैं। पद्य बड़े होने के कारण बड़ी सुगमता से कंठस्थ होते हैं। दान, इसके छोटे छोटे 80 कथानक हैं या 8 भागों में हैं, जो बुद्ध द्वारा समय समय पर उपदेशित किए गए हैं। ये मुख्यतः सुत्तों में हैं। इतिवृत्तक, इसमें 112 कथानक है जो गद्य एवं पद्य दोनों में हैं। इसका प्रत्येक सुत्त 27 शब्दों से प्रारंभ होता है, ऐसा तथागत के द्वारा कहा गया है। सुत्त निपात, इस पाठ में 70 सुत्तों का संकलन है या 5 वर्गों में विभाजित है, जिनमें धर्माख्यानों का वर्णन है। अशोक के भाबरु अभिलेख में इसका वर्णन है। विमानवत्थु, सुत्तों में वर्णित 85 कहानियां हैं जो 7 वर्गों में विभाजित हैं। इनमें प्रसादों की कथाएं हैं। इन्हें दिव्य पुरुष अपने अच्छे कर्मों के आधार पर प्राप्त करते हैं। पेतपत्थु, सुत्तों में 51 लघु कथाएं हैं जो 4 वर्गों में विभाजित हैं। इसमें भूत प्रेतों की कहानियां हैं। प्रत्येक प्रेत यह बताता है कि किन कुकर्मों के कारण उसकी यह अधोगति हुई है। इसका प्रमुख उद्देश्य कर्मवाद का प्रतिपादन करना था। थेर गाथा, 1360 कथाओं का संकलन है जो 264 प्रबुद्ध भिक्षुओं को समर्पित है। यह भिक्षुओं की ही रचनाएं हैं। थेरी गाथा, यह भिक्षुओं के गीतों का संग्रह है। इसमें 522 गाथाएं हैं जिन्हें 73 भिक्षुओं ने रचा था। इनमें बौद्धों की निवृत्ति, संयम, साबित आदि का विशुद्ध चित्रण है। जात, ये तथागत के पूर्वजन्म की कहानियां हैं। इन्हें बोधिसत्व कथाएं भी कहा जाता है। इनकी संख्या 550 है। यह बुद्ध काल के धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन करती हैं। निर्देश, यह ग्रंथ सारिपुत्र को समर्पित है। यह 2 भागों में विभाजित है। महानिदेश एवं चुल्ल निदेश, निदेश को पाली टीकाओं में प्राचीनतम माना गया है। इनमें तकनीकी शब्दों का विश्लेषण भी है। भविष्य में शब्दकोश तैयार करने का यह आधार बना। पति समृद्ध मग, इसमें भिन्न विषयों के प्रश्नोत्तरी है या 3 वर्गों में विभाजित है, जिसमें बौद्ध धर्म संबंधी गुण विषयों को वर्णित किया गया है। अपादान, सुत्तों में कहानियां हैं जिनमें भिक्षुओं भिक्षुणियों के पवित्र कार्यों का वर्णन है। इसके मुख्य भाग थेर अपादान एवं थेरी अपादान है। अपादान में 550 भिक्षुओं एवं 40 भिक्षुणियों की जीवनियां हैं जो बुद्ध के जीवन काल में थी। इसके अतिरिक्त इसमें बुद्ध अपादान भी हैं। बुद्धवंश, बुद्धवंश में गौतम बुद्ध के पूर्व के 12 कल्पों में हुए 24 पूर्व बुद्धों का वर्णन है। इसमें 26 अध्याय हैं। इसमें इन बुद्धों के ने किस तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन स्थापित किया का वर्णन है। अंतिम अध्याय में बुद्धों की सूची दी गई है तथा अंतिम तथागत बुद्ध के पश्चात मैत्रेय का अवतार माना गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात शारीरिक अवशेषों के विभाजन का भी वर्णन इसमें सुरक्षित है। क्रियापिटक, इनमें जातक कथाओं की 35 कहानियों का वर्णन है। यह भी वर्णित किया गया है कि किस तरह पूर्वजन्म में बोधिसत्व ने पारमिताओं में दक्षता प्राप्त की। इसमें केवल 7 पारमिताओं का वर्णन है। यह अशोक काल के पश्चात की रचना मानी जाती है। अभिधम्म पिटक, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश त्वाति मशा स्वर्ग में पंडुकम्बाल शिला की तलहटी में परिद्वाटक वृक्ष के नीचे वहां के देवताओं को दिया था। बुद्ध त्वाति मशा स्वर्ग अपनी माता को उपदेशित करने गए थे। बाद में यह ज्ञान बुद्ध ने सारिपुत्र को दिया जब मानसरोवर पर उनकी भेंट हुई। सारिपुत्र ने यह ज्ञान भद्दी को दिया। उनसे रेवती एवं अन्य शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित कर लिया गया। अभी का अर्थ उच्चता होता है। अतः अभिधम्म पिटक में धर्म के तर्क एवं दर्शन का वर्णन है। यह 7 पाठों में विभाजित है जिन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। ये निम्न है: धर्म संगीति, विभंग, कथावत्थु, पुगलपनाति, धातु कथा, यमक एवं पत्थन। धर्म संगिनी, इसमें लौकिक एवं लोकोत्तर विषयों का वर्णन है। चित्तरूप निर्माण आदि का विश्लेषण किया गया है। धर्म संगिनी भौतिक तत्व का भी अध्ययन करता है। विभंग, विभंग में धर्म संगिनी के लिए दिए गए विषयों का आलोचनात्मक वर्णन है। यह 18 अध्यायों में है। प्रत्येक अध्याय विभंग कहलाता है। कथावत्थु, इसे तीसरी संगीति में मुगलीपुत्र तिष्य ने रचित किया था। इसमें 23 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। यह बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के विकास का वर्णन करता है। पुगलपनीति, यह अन्य पाठों से भिन्न है। यह व्यक्तित्व की प्रकृति का विवरण देती है। इसे अंगुलित्तर निकाय का अंश माना जाता है। धातु कथा, इसमें मानसिक तत्वों तथा उसमें अन्य विषयों के संबंध का वर्णन है। धम्म संगीति में खड विभंग, धातु विभंग तथा अपतन विभंग धातु कथा का आधार बनाते हैं। इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं। सभी पाठ के खंड धातु और आयतनों का वर्णन है। यमक, इसमें मनोविज्ञान है। 10 अध्याय विभाजित है। पत्थन, अभिधम्म पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाजात ने इसे महाप्रकरण कहा है। प्रमुख भिक्षुओं के स्रोत, पारिभाषा के अन्य प्रमुख स्रोत निम्न है। पहला नागसेन, इसकी रचना मिलिंद पनौ है। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त साहित्य में सबसे प्रमुख है। इसकी रचना नागसेन के द्वारा की गई। मिनोंडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तरों का संग्रह किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक प्रारंभ में संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखी गई, जो अब अप्राप्य है। इसे पुनः श्रीलंका में पाली भाषा में संग्रहित किया गया है। इसकी प्रति उपलब्ध है। दूसरा महाकच्चायन, नीति प्रकरण की रचना महाकच्चायन ने की है। इसमें बुद्ध के के शिक्षाओं को तार्किक ढंग से बद्ध किया गया है। बौद्ध धर्म में तर्क विज्ञान का वर्णन इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। धम्मपाल ने 5वीं शताब्दी में इस पुस्तक पर अपनी टीका लिखी। इनकी दूसरी रचना पिटकोपदेश है। नीति प्रकरण को ही अगला पड़ाव माना जाता है। पिटकों के संदेशों का वर्णन है। तीसरा बुद्धदत्त। बुद्धदत्त ने विनय अभिधम्म पिटकों का टीकाएं लिखी है, जिसमे विनय विनयचय उत्तर विनिश्चय अभिधम्म अवतार रूपारूप विभवादि प्रमुख है। प्रथम दो विनय पिटक की टीकाएं हैं, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के नियम हैं। अभिधम्मावतार में 24 अध्याय हैं, जिसमें चित्त विपाक चित्त आदि का विवरण है। रूपारूप विभव में नाम रूप आदि का विवरण है। बुद्ध घोष। बुद्ध घोष के दो प्रमुख ग्रंथ नयनोदय तथा विशुद्धि मग है। विशुद्धि मग में त्रिपिटकों का संक्षिप्त इतिहास है। इसे बुद्ध साहित्य का राजकोष कहा जाता है। इसकी सामंत पाशादिका विनय पिटक के 5 पाठों की टीका है। इसमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक जानकारी है। बौद्ध संगीति के आयोजन के कारण उद्देश्य स्थान आदि का वर्णन है। विनय पिटक के पातिमोक्ष पटिका कनरव वितरणी है। इसमें बुद्ध के पश्चात हुए संघ के नियमों की भी व्याख्या है। इसकी सुमंगल विलासिनी दिग्ध निकाय पट्टिका या बुद्ध काल के सामाजिक राजनीतिक दर्शन एवं धार्मिक इतिहास का वर्णन करती है। इसमें भौगोलिक क्षेत्रों का भी वर्णन है। बुद्ध घोष की कई अन्य प्रमुख कृतियां हैं। पपंच सुदनी मध्यम निकाय पर टीका है। सारथ पवकाशिनी संयुक्त निकाय पर टीका है। अंगुत्तर निकाय पर बुद्ध घोष की टीका मनोरथपूर्णी कहलाती है। अट्ठशालिनी बुद्ध घोष की धम्म संगिनी पर टीका है। इसमें समकालीन इतिहास एवं भौगोलिक क्षेत्रों का भी विवरण है। धम्मपाल। धम्मपाल की सबसे महत्वपूर्ण कृति परमार्थ दीपनी है, जो क्रिया पिटक थेर थेरी गाथा पेट्टवत्थु विमानवत्थु इतिवत्थु तथा उदान पर टीका है। यह खुद्दक निकाय में सम्मिलित है। धम्मपाल ने बुद्ध घोष के विशुद्धि मग पर परमार्थ मंजूषा नामक टीका लिखी। नति प्रकरण पर भी धम्मपाल की टीका है। धम्मपाल की टीका में दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के धार्मिक जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। अन्य पाली साहित्य। दीपवंश तथा महावंश श्रीलंका के दो महान पाली साहित्य हैं। इनकी रचना पाली अट्टकथाओं के आधार पर की गई है। दीपवंश का उल्लेख लेखक अज्ञात है, जबकि महावंश की रचना महानाम नामक भिक्षु ने की थी। ये दोनों ग्रंथ बुद्ध का जीवन चरित्र, भारत एवं श्रीलंका का राजनीतिक इतिहास, प्रथम 3 बौद्ध संगीति आदि का वर्णन करते हैं। अशोक के द्वारा महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजे जाने का विवरण तथा उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार का भी विवरण है। इसकी रचना का काल लगभग 5वीं शताब्दी माना जाता है। महाबोधि वंश या बोधि वंश की रचना श्रीलंका में उपतिष्ठ नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। इसमें बुद्ध के निर्वाण, महापरिनिर्वाण तथा प्रथम 3 बौद्ध संगीति का वर्णन है। श्रीलंका में बोधि वृक्ष के आरोपित होने का भी विवरण है। दंत वंश या दंत धतु वंश की रचना धर्म कृति ने की थी। वे संस्कृत मगधी एवं व्याकरण के महान विद्वान थे। यह संस्कृत निष्ठ पाली भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की दंत धातु का वर्णन है, जिस कलिंग राजकुमार दंत कुमार के द्वारा श्रीलंका लाया गया था। धूपवंश को वच्चिकार ने 13वीं शताब्दी में लिखा। यह 3 अध्याय में विभक्त है। प्रथम अध्याय में बुद्ध के पुनर्जन्म एवं उसके स्तूपों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण का वर्णन है। तृतीय अध्याय में बुद्ध की धातुओं का वर्णन है। संस्कृत बौद्ध साहित्य। पहला हीनयान साहित्य। वशुमित्र के द्वारा रचित प्रकरण पद एक महत्वपूर्ण हीनयान ग्रंथ है। यह 5 बौद्ध ग्रंथ धर्मों का वर्णन करता है। रूप चित्त, चित्त धर्म, चित्त वी प्रयुक्त संस्कार तथा अश्वस्कृत धर्म, 10 प्रकार के ज्ञान आदि। स्थपित देव शर्मा के द्वारा रचित विज्ञान काया बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के पश्चात लिखी गई। इसमें मदग्लैंड के इंद्रियों, चित्त क्लेश, विज्ञान पर विचारों का वर्णन है। आर्य शारिपुत्र के द्वारा रचित धर्म स्कंद में बुद्ध धर्म संघशील आदि का वर्णन है। आर्य मदग्लायन ने अपने ग्रंथ प्रजापति शास्त्र में लोक प्रजापतियों का वर्णन किया है। मावस्तु को हीनयान के महानतम ग्रंथों में माना जाता है। यह बुद्ध परंपराओं का ज्ञान कोश है। इसकी रचना लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यह अपने आधुनिक स्वरूप में लगभग 3री शताब्दी में आई। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख ग्रंथ जातक माला, अवदान शतक, हिज्जवदान, अवदान कल्पिलता, अभिधर्म कोश, व्याख्या आदि प्रमुख है। आर्यश्वर के द्वारा रचित जातक माला को बोधिसत्व अवदान भी कहा जाता है। इसमें उपजातक कहानियों का वर्णन है। इसके अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पारमिताओं के मूल्य आवश्यक है। अवदान शतक की रचना लगभग 2वीं शताब्दी मानी जाती है। इसमें 100 अवदानों या वृत्तायुक्त कथाओं का वर्णन है। ये कर्म के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जैसे पाप कर्म पाप फल देते हैं तथा अच्छे कर्म पुण्य। दिव्यदान में 38 अवदानों का वर्णन है, जो भिन्न लेखों द्वारा लिखी गयी। इसमें मौर्य सम्राट बिंदुसार के काल में तक्षशिला विद्रोह आदि का वर्णन है। अवदान कल्पलता कश्मीर के कवि शिमिंद की रचना है। इसमें 107 कथानक है। यह तिब्बत का एक मान्य ग्रंथ है। यह कर्म के सिद्धांत का गुण वर्णन करती है। महायान संस्कृत ग्रंथ। महायान साहित्य अपने आप में एक साहित्य कोश है। असंख्य महायान साहित्य में 9 साहित्य या 9 धर्म विशेष हैं। ये हैं अष्ट सद्विवेका, प्रज्ञा पारमिता, सधर्म पुंडरीका सूत्र, ललित विस्तार, लंकावतार, स्वर्ण प्रभाष, मंडव्यूह, तथागत गुह्यक, समाधि राज तथा दश भूमिस्वर। इस साहित्य को वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। अष्ट सद्विवेका, प्रज्ञा पारमिता महायान सूत्रों में सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण है। इसमें महायान संप्रदाय के विभिन्न आयामों का वर्णन है। साधारण पुंडरीक भक्ति पूरक है तथा साहित्यिक रूप से अत्यंत उच्च है। यह चीन एवं जापान के कुछ बौद्ध संप्रदायों का प्रमुख ग्रंथ है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवन कथा है। 27 अध्यायों की इस पुस्तक में प्रारंभिक जीवन से धर्मचक्र प्रवर्तन तक का विवरण है। धार्मिक साहित्य के रूप में यह महायान संप्रदाय की एक अनुपम कृति है। लंकावतार में योगाचार या विज्ञानवाद का वर्णन है। स्वर्ण प्रभाष सूत्र के केवल कुछ ही अंश मध्य एशिया से प्राप्त है। यह बाद का महायान ग्रंथ है। दार्शनिक तथा बौद्धिक प्रवचनों के साथ इसमें तंत्र वाद का भी विवरण है। गढ़वियों की संस्कृत रचना उपलब्ध नहीं है। इसकी चीनी भाषा में प्रति प्राप्त हुई है। इसमें मुधन्य नामक भिक्षु का भ्रमणशील जीवन तथा बोधिसत्व सामंत भ्रत की शताब्दी की रचना है। इसमें महायान शिक्षाओं के साथ तांत्रिक शिक्षाओं का भी वर्णन है। प्रारंभिक तंत्र साहित्य में यह सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। समाधि राज सूत्र निर्वाण के लिए समाधि पर अत्यधिक बल देता है। दशभूमिस्वर में निर्वाण प्राप्ति हुए 10 चरणों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अन्य महान ग्रंथ निम्न हैं। अश्वघोष, जिनकी ख्याति महान कवि, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार के रूप में है, वे बुद्धचरित एवं सौंदर्यानंद सारिपुत्र प्रकरण नामक महान रचनाएं की। बुद्धचरित्र एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन की कथा है, जो उनके राजमहल के वैभवयुक्त जीवन से प्रारंभ होकर वाराणसी से उपदेशों का वर्णन करती है। बुद्ध की जीवन शैली का यह प्रथम अवतरण है। इसमें पौराणिक कथाओं तथा पूर्व बुद्धकालीन दार्शनिक मंत्रों को भी लिखा गया है। सौंदर्यानंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद एवं उसकी पत्नी सुंदरी की कथा वर्णित है। इसमें बुद्ध द्वारा उसके धर्म परिवर्तन का भी उल्लेख है। सारिपुत्र प्रकरण में बुद्ध के परम प्रिय शिष्य सारिपुत्र के जीवन को अंकित किया गया है। नागार्जुन ने माध्यमिक शास्त्र या माध्यात्मिक कारिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 27 अध्यायों में माध्यमिक दर्शन का उल्लेख किया गया है। इसे पुनर्वाद भी कहा जाता है। आर्यदेव की रचना चतुशतक संस्कृत भाषा में है। इसमें माध्यमिक दर्शन का उल्लेख है। माध्यम कारिका के पश्चात यह इस मत का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। संघ की योगाचार भूमि शास्त्र संस्कृत में रचित है। इसे राहुल संस्कृतायन के द्वारा खोजा गया। यह सप्तम अध्याय में है। इसमें योगाचार मत का वर्णन है। वसुबंधु ने 20 करिका का ग्रंथ विमिशिका तथा 30 करिका का ग्रंथ त्रिमिशिका लिखी। इसमें विज्ञानवाद का मत का वर्णन है। दिग्नाग की रचना न्याय प्रवेश है। इसमें भारत के महानतम तर्कशास्त्रियों में एक गिना जाता है। दिग्नाग को तर्कशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसमें 3 अध्याय हैं। प्रत्यक्ष स्वार्थानुमान, पार्थानुमान। शांतिदेव की रचना शिक्षा समुच्चय है। ये बौद्ध मत का कोश है। इसमें महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों के कथानक आदि का वर्णन किया है। बौद्धिचार्य अवतार शांतिदेव की एक अन्य रचना है। इसमें महायान के धार्मिक एवं दार्शनिक पक्षों का वर्णन है।